एक तरफ जहां देश में किसान आत्महत्या, रोजगार और दूसरे मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, सरकार तो बंद है, संसद में बातें कर्नाटक चुनाव को लेकर की जा रही हैं, देश की जनता देख रही है और विपक्ष रोजगार को लेकर सवाल पूछ रहा है। सर, रोजगार को लेकर आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, रोजगार तो नहीं मिला, हाँ हाथ में पकौड़ा जरूर आ गया देश के रोजगारों के हाथ में।
देखिए, प्रधानमंत्री ने इस देश के 12 करोड़ बेरोजगार नौजवानों का मजाक उड़ाया
जी,
और उसी के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी राज्यसभा में खड़े होकर के देश के बेरोजगारों का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि जो बेरोजगार है उससे बेहतर है, बेरोजगार रहने से बेहतर है पकौड़े बेचिए। बिल्कुल, पकौड़े बेचना सम्मान की बात है, इस शहर में हजारों लोग इस प्रकार का धंधा करते हैं और मैं उन सबके पुरुषार्थ पर गर्व करता हूं। लेकिन क्या सारे 12 करोड़ लोग, चूंकि तुम फेल हो गए हो इनको रोजगार देने में, तो सब पकौड़ा बेचेंगे? ठीक है, अगर आपकी ये नई अर्थनीति है तो मैं स्वीकार करता हूं, और इसी अर्थनीति के आधार पर हमने आह्वान किया मुंबई के बेरोजगारों से कि चलिए वहां पर पकौड़े बेचते हैं, और जब वहां पकौड़े बेचने के लिए लोग पहुंच रहे थे तो मुझे यहां रास्ते में गिरफ्तार किया गया, और जो लड़के वहां पकौड़े लेके बैठे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो सरकार की घबराहट है और बौखलाहट है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई नौजवानों को रोजगार देने में। और ये सवाल बार बार हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी उठाते हैं कि साहब बाकी बातें छोड़ो, इन नौजवानों के रोजगार के प्रश्न का क्या हुआ, और उनके पास जवाब नहीं है, और जवाब देते समय ये पकोड़े का गंदा सा मजाक किया उन्होंने। कल संसद में भी प्रधानमंत्री ने जो 4 साल का उनका कामकाज है, जिसमें देश जानना चाहता आपने क्या किया, किसान क्यों रो रहा है, नौजवान क्यों बेरोजगार है, देश की पूरी अर्थव्यवस्था एकदम तहस नहस हो चुकी है, जो हमारा जो कानून और व्यवस्था का मामला खत्म हो चुका है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, इन प्रश्नों के ऊपर लोग प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हैं। अभी लेटेस्ट जो आया है राफेल डील का मामला आया है, आप फ्रांस की सरकार से लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं, जिस भाव पे हमने डील तय की थी उसके 3 गुने भाव पे आप खरीद रहे हैं, हम आपसे जवाब मांगते हैं, आप बोलते नहीं हम नहीं बता सकते, तो आप घोटाले में फंसे हैं, आप देश को एक सांप्रदायिक आग के आग में ढकेल रहे हैं। और जब ये सवाल पूछे जा रहे, लोग बेरोजगार हैं ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप इधर उधर की बात कर देते हैं, आपके पास जवाब नहीं है। तो ये जो सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, इस सरकार को भी और एक्सपोज करना पड़ेगा। बड़ी 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 बातें कही थी उन्होंने, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, आज रोज 550 नौकरियां जा रही हैं, देश में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं जो पूरी दुनिया में सर्वाधिक है, इतने बेरोजगार कभी नहीं थे हिंदुस्तान में।
सर, अब आपके इस आंदोलन का अगला कदम क्या होगा, किस तरह से होगा?
चलेगा ऐसे ही चलेगा, आगे भी चलेगा, कहाँ कहाँ रोकेंगे, गली गली में नाके नाके पे पकौड़ा बेचने का कार्यक्रम होगा, रोक के दिखाओ आप।
मैं यहाँ चौपाटी पे हूँ जहाँ बाल गंगाधर तिलक जी का पुतला है, जिन्होंने स्वतंत्रता ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार इसका नारा दिया था आजादी की लड़ाई के समय। ठीक वहीं पे सिग्नल के पास मुझे, मेरी गाड़ी को और मेरे साथियों को अकेले यहाँ पुलिस ने घेर रखा है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों, तो 151 के तहत, और सुबह से इस प्रकार का एक वातावरण बनाया जा रहा है कि मुंबई के जो नौजवान आज मेरे आह्वान पे मंत्रालय के सामने पकौड़ा बेचने के लिए आ रहे हैं, वो अभियान नहीं चलना चाहिए, वो विरोध नहीं होना चाहिए। हम तो सरकार से यही पूछ रहे हैं कि जो बेरोजगार है वो कहाँ जाएंगे आगे। सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो पकौड़ा बेचता है उसको भी तो रोजगार मिला, पकौड़ा बेचे, और अब जब मुंबई के बेरोजगार पकौड़ा बेचने का एक विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, और मैंने जब उनको आह्वान किया तो आज मुझे यहाँ पे चौपाटी पे रोक लिया गया। अमित शाह जी कहते हैं कि जो बेरोजगार हो पकौड़ा बेच सकता है, तो एक तरफ आप पकौड़ा बेचने के लिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब पकौड़ा बेचने के लिए नौजवान तैयार हो रहे हैं तो उसमें आप बाधाएं डाल रहे हैं, ये क्या है? जिस देश में लोकशाही है, लोकतंत्र है, संविधान है, संविधान सबको मौलिक अधिकार देता है, उस देश में इस प्रकार से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दबाव में आकर के पुलिस कार्रवाई कर रही है, और हमारे जैसे विरोधी पक्ष के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, लोगों के सवाल उठाने से रोक रही है। देख लीजिए, आज यहाँ पे चौपाटी पे अकेली एक मेरी गाड़ी को पुलिस वालों ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग डाल करके घेर रखा है। ये एक प्रकार का इमरजेंसी का वातावरण है, एक प्रकार का हम सबका जो मौलिक अधिकार है उन अधिकारों के हनन का वातावरण है। मैंने पुलिस वाले से पूछा कि साहब कौन सा पेपर है दिखाइए, कौन से रूल के तहत, कौन सा पेपर, कौन से वारंट है जिसके तहत आप मुझे यहाँ पर रोक रहे हैं या मुझे लेके जाना चाह रहे हैं? तो उनके पास कोई पेपर नहीं है, कहते नहीं बगैर पेपर के हम उठा लेंगे। तो ये एक प्रकार का अन्याय है, अत्याचार है, और इस अत्याचार के खिलाफ पूरे देश के नौजवानों को उठना पड़ेगा। आज ही खबर आई है, यूनाइटेड नेशन ने कहा है इस समय हिंदुस्तान में सर्वाधिक बेरोजगार नौजवान है और इनकी संख्या 12 करोड़ तक पहुंच चुकी है, और ये खासकर पिछले 4 वर्षों में हुआ है। हमेशा हमारे देश में 4-5 करोड़ लोग बेरोजगार रहते हैं और बाकी सबको रोजगार मिलता रहता है। यहाँ रोज 550 नौकरियां छीनी जा रही हैं, नौजवान रस्ते पे है, तड़प रहा है, भूखा मर रहा है, और उसको रोजगार देने के लिए अगर हम आह्वान करते हैं, अगर उसको रोजगार देने के लिए हम मांग करते हैं, तो हमारे खिलाफ किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है? ऐसे नौजवान बेरोजगारों के खिलाफ सरकार ने जो अभियान चला रखा है, और ऐसे नौजवान बेरोजगारों की मदद करने वालों के खिलाफ सरकार ने जो अभियान चला रखा है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ, और यहाँ से मैं मुख्यमंत्री से आह्वान करता हूँ, इस प्रकार की हरकत बंद करिए। जो विरोधी पक्ष के नेता हैं उनको सम्मान देना सीखिए, उनका एक हक है। आप सरकार में हैं, आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी पुलिस है, आपके पास CBI, आपके पास ED है, आपके पास IT है, सब आपके पास है, लेकिन हम लोग इस देश के नागरिक हैं, और इस देश के संविधान ने, कानून ने हमें भी कुछ दे रखा है, वो हक हमारा है, और ये हक छीनने का हक आपके पास नहीं है। तो बिल्कुल इस समय चौपाटी पे मैं खड़ा हूँ लोगों के सामने सिग्नल के ऊपर, और मुझे रोक दिया गया। रोक करके क्यों रोका गया, कैसे रोका गया, मुझे इसका कोई कारण नहीं मालूम।
जिस तरह से पॉलिटिक्स होती हुई नजर आ रही है, पूरी संभावना है कि आने वाले समय में भी देश भर में पकड़ा पॉलिटिक्स जमकर रंगा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव अगले साल हैं, तो निश्चित तौर पर BJP हो या कांग्रेस, सभी अपनी अपनी तरीके से पकड़ा पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है। SW News के लिए रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट।